वेदा अहम् एतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवरणम् तमसः परस्तात् तमेविदत्वात् निर्तुम् नेति हि नान्यपन्था विद्यते यनाये प्रातःकाल के प्रवचन में इसी मंत्र के आधार पर प्रवचन चल रहा था। यजुर्वेद का ये मंत्र है जो बोला है, वेदा अहम् एतम् पुरुषम् महान्तम्, मैं उस महान पुरुष को जानूं। कैसा वो महान पुरुष है? आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, इस सूर्य के समान प्रकाशमान और सब आवरणों से अंधकार से दूर जो है, अंधकार से परे है। तमेव विदत्वात् मृत्युमेति, इस प्रकार के प्रकाश स्वरूप परमात्मा को जानकर अति मृत्युमेति हम मृत्यु को उल्लंघन कर सकते हैं, पार कर सकते हैं या मौत पर विजय पा सकते हैं। इसी के विषय में, परमात्मा के विषय में बात चल रही थी कि शब्द, अर्थ और ज्ञान तीन बातें हुआ करती हैं प्रत्येक पदार्थ के लिए। किसी भी पदार्थ को पुकारना हो, कहना हो, तो पहले उसका नाम होता है। फिर उस नाम, जैसे परमात्मा नाम है, अब फिर इसके अर्थ की बात होगी कि परमात्मा का अर्थ क्या है। पहले तो शब्द हो गया, शब्द के द्वारा परमात्मा को पुकारा, ए परमात्मा। अब इसका अर्थ क्या करेंगे? परमात्मा का अर्थ करेंगे हम परम कहते महान को और आत्मा कहते ज्ञान रूप को। अत स्यातत गमने धातु से आत्मा शब्द की सिद्धि होती है, जिसमें निरंतर ज्ञान बना रहे उसको आत्मा कहते हैं। तो जीवात्मा में भी निरंतर ज्ञान बना रहता है और परमात्मा में भी निरंतर ज्ञान रूप ही है वो। तो अब अर्थ की बात होती है, परमात्मा वह महान आत्मा, सबसे बड़ा आत्मा। और भी हम उसके बहुत से नामों से पुकारते, जैसे सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का अर्थ हो जाता सब में व्यापक होकर के, समा करके, ओत प्रोत होकर के ठहरा हुआ है। ये सर्वव्यापक शब्द का अर्थ हो जाता है। ऐसे उसके लिए हम निर्विकार शब्द भी कहते हैं कि परमात्मा में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, तब्दीली या परिणाम या परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार और भी उसके लिए शब्दों का हम प्रयोग करते हैं कि न्यायकारी, वो सब कुछ इंसाफ ही करता है, हमारे की तरह उसके अंदर गैर इंसाफी की कोई बात नहीं है। तो इन अर्थों के द्वारा हम परमात्मा को पुकारते हैं या नामों से पुकारते, उन नामों का ये अर्थ होता है। तो शब्द और अर्थ, तो ये उसके अर्थ हैं। जैसे निरअवयव भी परमात्मा को कहते हैं, जिसका कोई हिस्सा विभाग ना हो सके उसको निरअवयव कहते हैं। निराकार भी उसको लोग कहते हैं, जिसका कोई आकार, शक्ल, सूरत देखने में ना आए उसको निराकार कहते हैं। जिसका आकार तो जरूर कुछ न कुछ भगवान का मानना पड़ेगा, क्योंकि जब वो सत्ता रूप से वर्तमान है तो इसलिए निराकार नाम की तो कोई चीज नहीं हो सकती है। पर उसको निराकार कब कहा गया है कि अगर उसका कोई जो आकार है उसके आकार की हम दूसरे आकार के साथ तुलना नहीं कर सकते, वह उसके समान आकार वाला और कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए उसको निराकार कहा गया है। तो ये हुआ शब्द और ये हुए उसके अर्थ। और भी नामों से उसको पुकारते हैं कि परमात्मा हमारे दुखों का विनाश करने वाला है, जैसे भर्गो देवस्य शब्द गायत्री मंत्र में आता है तो वहां भर्गो देवस्य का अर्थ होता है कि वो देवता भगवान हमारे पापों को विनाश करने वाला है। अब मैं भी इस परमात्मा के विषय में बहुत अध्ययन और मनन कर रहा हूं। अब ये जितने भी नाम मैंने अभी तक कहे हैं, वास्तविक में ये हमने ही उसके नाम ये कल्पित किए हैं या बनाए हैं, या एक प्रकार से हम लोग ही उसके नामों का नामकरण करते हैं। जैसे हम अपने बच्चों का या किसी व्यक्ति का, बालकों का नामकरण करते हैं, तो अगर हम न बोलें, हम न कहने वाले हों, तो परमात्मा का कोई नाम भी लेने वाला नहीं होगा। ये मनुष्य ही नाम लेते हैं, ये उसको पुकारते हैं। तो इसलिए वो जो इस प्रकार की चेतन सत्ता है, उसके विषय में हमने अनेक प्रकार की कल्पनाएं की हैं, और वो कल्पनाएं बहुत सी तो आधार युक्त हैं, बहुत सी निराधार भी हैं। अब वो एक इतनी सूक्ष्म और महान शक्ति है कि करोड़ों व्यक्ति उसके खोज में लगे हैं, अनुसंधान में लगे हैं, पर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अंश उसके विषय में समझ पाते हैं। छोटा सा इतना व्यक्ति, 5-6 फुट का व्यक्ति, इतनी महान चीज को कितना समझ लेगा। इसलिए हमारा ज्ञान जो है पुरुषों का, वो सीमित सा ज्ञान है, एक देशी ज्ञान है। हमारी दृष्टि भगवान के सर्व देश में नहीं जा सकती। जैसे ये आकाश है, इस आकाश के समान ही आप परमात्मा को समझ लो। अब सारे आकाश को तो मेरी दृष्टि नहीं ना देख सकेगी, जहां जहां तक ये नजर जाएगी आंख की, वहां वहां तक मुझे आकाश नजर आएगा, आगे का नहीं नजर आता। अब बीच में पहाड़ आ गया और चीज दीवार आ गई, मकान आ गए। तो इसी प्रकार परमात्मा जो है आकाश की तरह, वो व्यापक सा है, सबके अंदर वो समाया हुआ सा है। जैसे ये आकाश निर्विकार सा है, इसमें कोई विकार प्रतीत नहीं होता, कोई तब्दीली नजर नहीं आती, ऐसे उसमें भी नहीं आती है। तो उसके थोड़े थोड़े देश को हम समझ पाते हैं, और उसी के आधार पर जितनी हमारी समझ होती है उसके नामों की हम कल्पना कर लेते हैं कि जैसे परमात्मा, जैसे मेरा चेतन आत्मा, ऐसे वो परमात्मा भी चेतन है, इसलिए उसको परमात्मा कह दिया। ईश्वर शब्द भी उसके लिए कहा है कि जो सारे ऐश्वर्य का, धन दौलत आदि का मालिक हो, उसको ईश्वर कहते हैं। तो ये सब वह इतना सम्मान हमने भगवान को दिया है, वह इतनी उसकी स्तुति हमने गाई है, और बाकी में गाना भी एक प्रकार से ठीक ही है उसकी स्तुतियों का, क्योंकि जहां हमारी कोई पेश नहीं जाती, जिन जिन कार्यों को हम कर लेते हैं उनमें तो कहते मैंने किया, और जहां हमारी पेश नहीं जाती। मैं दिल्ली में एक मेरा भक्त है ओम प्रकाश मिलाप वाला, उसको कैंसर हुआ था। तो अब मैं भी ये सुनता पढ़ता देखता आ रहा था कि कैंसर का कोई रोगी बचता नहीं देखा था मैंने अपने जीवन में, न सुना था। तो उसके विषय में मेरा भी ये निश्चय हुआ हुआ था कि इसने बचना नहीं। मैं तो अमेरिका वगैरह गया हुआ था, 8 महीने भी वो चार पाई पे ही रहा, फिर जब आया तब भी वो बीमार और मरणासन हुआ हुआ था मेरे आने के कुछ दिन बाद। तो मेरी वहां कुछ भी पेश नहीं जा रही थी उसके रोग को दूर करने के लिए, उसके दुख को दूर करने के लिए, उसको सुखी बनाने के लिए, उसको आराम पहुंचाने के लिए कोई पेश नहीं जा रही। तो ऐसी जगह मनुष्य हताश सा हो जाता है, निराश सा हो जाता है। फिर वो किसी ऐसी अव्यक्त, क्योंकि अब डॉक्टर भी वह वहां निराश से हो जाते हैं, घर के सेवा करने वाले भी उनकी भी कोई पेश नहीं जाती, संतों महात्माओं की भी पेश नहीं जाती, अर्थात कोई भी उसको बचाने में समर्थ नजर नहीं आता। तो ऐसे अवसरों में ये मनुष्य हताश सा हो जाता है। तो फिर किसी अव्यक्त सी महान शक्ति को कहता, अच्छा कोई कुदरत कह लो, परमात्मा कह लो, कोई और कह लो, तो इसने तो होना ही है, या परमात्मा को ऐसा मंजूरी है, इसने बचना नहीं है। तो इस प्रकार की जब अवस्थाएं आती हैं जहां हमारी पेश नहीं जाती तो वहां हम भगवान को पुकारने लगते हैं, कहने लगते हैं। हालांकि भगवान भी वहां कुछ नहीं करता उस काल में। हम रोगी बैठा, हम परमात्मा है, भगवान इसको अच्छा कर दे, वो करता ही नहीं है। अगर हमारी प्रेयर से, हमारी प्रार्थना से भगवान अच्छा करता होता तो न तो डॉक्टरों की जरूरत रहती और न किसी और की जरूरत रहती, हमारी प्रेयर से ही वो मनुष्य अच्छा हो जाता, परंतु होता नहीं। तो ऐसी अवस्थाओं में हमारी कोई पेश नहीं जाती। जैसे ये जन्म और मरण जो है ये भी मनुष्य के अपने अधीन नहीं है, एक तरह से तो अधीन है। मैं कोठे से छाल मार कर मर सकता हूं, ये तो मैं कर सकता हूं, पर स्वाभाविक जो जन्म और मरण है वो मनुष्य के अख्तियार की बात नहीं है। स्वभाव से ही जन्म हो जाता है और स्वभाव से ही मरण होता है। वैसे आदमी मर सकता है छाल मार के, कूद के, जहर खा करके, परंतु जिस वक्त मरण की बात होती है वहां भी कोई पेश नहीं जाती जन्म में। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जहां इस छोटे इंसान की पेश नहीं जाती। तो वहां किसी महान इंसान, अगर उस परमात्मा को महान इंसान कह दिया जाए तब पर भी वो महान रह हमारी बात वो सुनता नहीं है। हम जैसे उसको मनाना चाहते हैं वैसे मानता नहीं है, जैसे हम उससे कराना चाहते हैं वैसे करता नहीं है, पर फिर भी हम उसको कहते हैं क्योंकि हमारे वहां पेश नहीं जा रही। हमारी भी पेश नहीं जा रही तो वहां भगवान की भी पेश नहीं जाती। अगर उसकी पेश जाती तो रोगी को हमारे कहने से अच्छा कर देता, हमारा मुकदमा लगावा, हमको जिता देता। तो ये सारी बातें हमने अपने लिए कल्पनाएं की, एक इस प्रकार की परमात्मा के प्रति मनोती ऐसी बनाई। शब्द और अर्थ और ज्ञान तो ऐसे तो मानना पड़ेगा हमें परमात्मा के विषय में, तो इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है इसका कोई बनाने वाला है, हमसे तो ये बन नहीं सकता। ये सामने का भी पर्वत हम मनुष्यों से नहीं बना, कोई बनाने में समर्थ नहीं हुआ, तो इसको कोई बनाने वाला होगा या हुआ था या अब भी है। और ये जो सूरज सवेरे इधर से चला था, अब जाके यहां छिपा है सामने, इसको भी कोई गति करने वाला देने वाला कोई है, क्योंकि सूर्य भी जड़ पदार्थ है। ये हमारी पृथ्वी भी गतिशील क्रियाशील हुई हुई है, ऐसे घूमती रहती सूर्य के चारों तरफ को। तो अब भले ही हम इनको प्रत्यक्ष देखते हैं चलते हुए, पर हमें वो चीज प्रत्यक्ष नहीं होती है जिसके द्वारा ये गतिशील हुए हुए। जैसे हमारे शरीर में भी, हमारा शरीर जिस चेतन सत्ता के द्वारा गतिशील हुआ हुआ, कर्मशील हुआ हुआ, व्यापारशील हुआ हुआ, उस चेतन सत्ता को भी हम प्रत्यक्ष नहीं देख रहे, केवल अनुमान कर रहे हैं इस शरीर को देखकर और मुर्दे शरीर को देखकर। तो इसमें भी अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक ही हुआ करता है। जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होगा उसका अनुमान भी नहीं हो सकता, और जिसका प्रत्यक्ष नहीं होगा अनुमान भी नहीं होगा, उसको शब्द प्रमाण भी नहीं कह सकेगा। शब्द प्रमाण का मतलब ये वेद शास्त्र बाइबल कुरान आदि ये ग्रंथ, दर्शन शास्त्र उपनिषद या महापुरुषों के जो वचन हैं उन, उसको शब्द के रूप में, शब्द प्रमाण के रूप में कहते हैं। वेद शास्त्र बाइबल कुरान आदि ये शब्द प्रमाण के रूप में है। तो अब अगर परमात्मा का प्रत्यक्ष ना हो और उसका अनुमान भी नहीं होगा तो उसको शब्द शब्द के द्वारा भी कथन नहीं किया जाएगा। जैसे हाथी होता है, हाथी के सींग कभी किसी ने देखे नहीं, प्रत्यक्ष भी नहीं होता, और जिसके हाथी के कभी सींग नहीं, कभी उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। और फिर उसके सींगों का कोई विद्वान कोई कहेगा भी नहीं, भी हाथी के सींग मैंने देखे। तो यहां बिल्कुल ही सींगों का अभाव है। तो इसलिए जब कोई पदार्थ है तो उसका अनुमान भी होगा, उसको शब्द प्रमाण भी कहेगा, और वो पदार्थ है उसका प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो इसलिए परमात्मा भी प्रत्यक्ष का विषय बनेगा। अगर कोई पदार्थ संसार में प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है, तो वो पदार्थ भी नहीं होगा, जैसे हाथी के सिंह पदार्थ नाम की होती। तो इसलिए परमात्मा भी प्रत्यक्ष का विषय तुम्हारे बनना चाहिए और बनेगा। तो शब्द और अर्थ, पहले शब्द से हमने परमात्मा को पुकारा, फिर हम उसका अर्थ करने लगे। निरअवयव सर्वव्यापक और चेतन और गति प्रदान करने वाला, ये अर्थ करते हैं हम उसके। जहां सर्वव्यापक है, व्यापक होने से अंतर्यामी रूप से, चेतन होने से सब पदार्थों को गतिशील बनाए हुए, तो ये हम उसका अर्थ करते हैं। तो अर्थ के द्वारा गया हमें उसका ये प्रतीति होती जा रही है अर्थ। फिर हो जाता ज्ञान। अब परमात्मा सर्वव्यापक है, इस पृथ्वी को कैसे चला रहा है, या ये आत्मा हमारे शरीर में वर्तमान है इसको कैसे चला रहा है, अब यहां ज्ञान की जरूरत है। अब ज्ञान की शब्द अर्थ और ज्ञान, अब ज्ञान कैसे होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इस प्रकार अगर इंद्रियों के द्वारा देखने वाली चीज होती तो इंद्रिय बता देती कि ये परमात्मा का रूप है, वो भी नहीं बतलाती, ऐसा रूप देखने में नहीं आया। अब वो ज्ञान का विषय जरूर बनेगा। अब किसके ज्ञान का विषय बनेगा, अब उसको हम बुद्धि के, क्योंकि बुद्धि ही हमारी ज्ञान रूप है, बुद्धि में ही ज्ञान का विकास होता है। एक बच्चा बचपन से, छोटा बच्चा स्कूल में जाता, पढ़ने लगता, ज्ञान होता चला जाता है। एक समय आता है 10-15 साल में विद्वान हो जाता है। मैं बहुत वर्षों से अध्ययन कर रहा हूं, 50 वर्षों से इस ब्रह्म विद्या का, इस अध्यात्म विद्या का, मुझे इस विषय में बहुत कुछ ज्ञान हो गया, बहुत कुछ बातों का पता लग, तो कुछ काल गया ये ज्ञान बढ़ता है, विकास भाव को प्राप्त होता है। तो बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि उसको खोजने लगती है, अनुसंधान करने लगती है, उस पर रिसर्च करने लगती है। तो रिसर्च करते करते फिर उसकी खूब छानबीन, जैसे कोई भोज पत्र को उखाड़ता ही चला जाए, केलों के पत्तों को उखाड़ता ही चला जाए, अंदर कुछ नहीं निकलता, तो एक प्रकार से ऐसी ही स्थिति आ जाती है परमात्मा के विषय में। क्या जितने हम उसमें गुणों का आरोप कर रहे थे, गुण बता रहे थे, वो अंत में आन करके हमें एक प्रकार से निर्गुण साई सिद्ध होता है। क्योंकि जहां गुणों का प्रादुर्भाव होगा, एक गुण के पास बाद कोई गुण वहां उत्पन्न होता चला जाएगा, तो वहां विकार रूप धर्म पैदा होगा। तो परमात्मा में विकार रूप धर्म तो है नहीं। अब फिर उसको हम बुद्धि के द्वारा समाधि की अवस्था में, जब बुद्धि अपने विषयों से, इंद्रियों के विषयों से हटकर अकेली खड़ी हो जाए शांत रूप से, तब हम उसको परमात्मा के साथ संबंध बनाएंगे, तो वो परमात्मा का ज्ञान करके दिखा देंगे। तो शब्द अर्थ और ज्ञान, तो वो ज्ञान होता है समाधि की स्थिति में, जब संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था होती है। पहले उसको नाम रूप से जाना, फिर अर्थ रूप से हमने प्रत्यक्ष किया, समझा, जाना ईश्वर को, फिर उसका प्रत्यक्ष किया कि ये परमात्मा है। तो बुद्धि के द्वारा जब कोई भी बीच में व्यवधान नहीं रहेगा, हमारा सीधा संपर्क आत्मा या परमात्मा के साथ हो जाएगा, तो बुद्धि उसको प्रत्यक्ष करके बतला देगी कि ये इसका रूप है। तो उस रूप के लिए इन्होंने कहा कि न शक्यते वर्णयितुं तुम धीरा, उस रूप को वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। जैसे शांति है, आनंद है, शांति और आनंद के रूप को हम नहीं बतला सकते, पर हमें शांति की, आनंद की अनुभूति तो होती है। इसी प्रकार हम परमात्मा के रूप को कह नहीं सकते कि कैसा रूप है, परंतु वो हमारे अनुभव का, प्रत्यक्ष का विषय जरूर बनता है। सब तरफ से हटाकर उसको देखने की, समझने की कोशिश करें और समाधि जैसी अवस्था में जाने की चेष्टा करें।